जय गोपी जनवल्लभागिरिवरधारे यशोदानंदन व्रजजनरंजना यशोदानंदन व्रजजनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजना यशोदानंदन व्रजजनरंजना यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन विहारी राधा वृंदावन विहारी राधे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद जो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद की। जो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरव भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। व्रज भूमि वृंदावन धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा माई जमुना माई की, भक्ति देवी श्रीमती तुलसी महारानी की, कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 1। श्री शुक उवाच भरतस्य आत्मजः सुमतिः नाम अभिहितः यम उहवाव केचित् पाखंडिन ऋषभपदवीं अनुवर्तमानं च अनार्याः अवेद समाप्नातां देवतां स्वमनिषया पापियस्या कलौ कल्पयिष्यन्ति। भाषांतर और तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शब्दशः अर्थ। श्री शुक उवाच, शिल शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भरतस्य भरत महाराज का आत्मजह पुत्र सुमति नाम अभिहितः, जिसका नाम सुमति था, यम जिसको उहवाव निसंदेह केचित कोई पाखंडिनः वैदिक ज्ञान विहीन पाखंडी जन ऋषभ पदवीम, राजा ऋषभदेव के मार्ग का, अनुवर्तमानम अनुसरण करते हुए, च तथा अनार्या वैदिक नियमों का कठोरता से पालन न करने वाले अनार्य, अवेद समानाताम जिसका वेदों में उल्लेख नहीं है, देवताम भगवान बुद्ध या बौद्ध विग्रह के समान, स्वमनीषया अपनी बौद्धिक कल्पना से, पापीयस्य अत्यंत पापमय, कलौ इस कलियुग में, कल्पयिष्यन्ति कल्पना करेंगे। भाषांतर शिल शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, महाराज भरत के पुत्र सुमति ने ऋषभदेव के मार्ग का अनुसरण किया, किंतु कुछ पाखंडी लोग उन्हें साक्षात भगवान बुद्ध मानने लगे। वस्तुतः इन पाखंडी नास्तिक और दुष्चरित्र लोगों ने वैदिक नियमों का पालन काल्पनिक तथा अप्रसिद्ध ढंग से अपने कर्मों की पुष्टि के लिए किया। इस प्रकार इन पापात्माओं ने सुमति को भगवान बुद्ध देव के रूप में स्वीकार किया और इस मत का प्रवर्तन किया कि प्रत्येक व्यक्ति को सुमति के सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार अपनी कोरी कल्पना के कारण वे रास्ते से भटक गए। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, जो आर्य है वे वैदिक नियमों का कठोरता से पालन करते हैं, किंतु इस कलियुग में आर्य समाज नामक एक संस्था का जन्म हुआ है जो परंपरा से चले आ रहे वेदों के मंतव्य से अनभिज्ञ है। इसके नायक सभी प्रामाणिक आचार्यों की निंदा करके अपने आप को वैदिक नियमों का सत्यनिष्ठ पालक मानते हैं। वैदिक नियमों का पालन न करने वाले ऐसे आचार्य इस समय आर्य समाज या जैन कहलाते हैं। वे न केवल वैदिक नियमों का पालन ही नहीं करते, प्रत्युत भगवान बुद्ध से भी उनका कोई संबंध नहीं है। सुमति के आचरण का अनुकरण करने के कारण वे अपने आप को ऋषभदेव की संततियां घोषित करते हैं। जो वैष्णव है वे इनकी संगति से सावधानी से दूर रहते हैं, क्योंकि ये वेद पथ से अनभिज्ञ होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्य, वेदों का वास्तविक उद्देश्य मुझे जान लेना है। संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का यही आदेश है। जो भगवान श्री कृष्ण की महानता से परिचित नहीं है उसे आर्य नहीं माना जा सकता। भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान बुद्ध ने भागवत धर्म के दर्शन के प्रचार की विशिष्ट विधि अपनाई थी। वे प्रायः नितांत पाखंडियों को उपदेश देते थे। नास्तिकों को किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती, अतः भगवान बुद्ध ने कहा कि ईश्वर नहीं है, परंतु उन्होंने अपने अनुयायियों को उनके लाभ के लिए उपदेश देने की यह विधि अपनाई। उन्होंने छद्म रूप में उपदेश दिया कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ऐसा होते हुए भी भगवान बुद्ध स्वयं ईश्वर के अवतार हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के प्रातःकालीन भागवत कक्षा में सबका सहर्ष स्वागत। तो सबसे प्रथम मैं यहाँ उपस्थित वैष्णव का आशीर्वाद लेना चाहूँगा, विशेष करके यहाँ प्रेमलीला माता जी और आदिकेश्वर प्रभु उपस्थित हैं। मतलब जितनी मेरी आयु नहीं है उतना उनका अनुभव है भक्ति में, तो स्पेशली मैं उनके आशीर्वाद की याचना करते हुए आज का जो श्लोक है उसके ऊपर कुछ जो भी वरिष्ठ भक्तों ने उसके ऊपर बताया जो मैंने अपने वरिष्ठों से सुना है उसको या पुनः कहने का प्रयास करूंगा। तो कल हमने 14वें अध्याय का समापन किया है। तो प्रियव्रत महाराज के वंश का वर्णन इसमें जो पहला श्लोक है, तो वैसे तो ये पूरा 5वां स्कंद है। इसमें जो ब्रह्मांड की भौगोलिक जो विश्व रचना है उसके बारे में कहा जाता है और इसकी शुरुआत पहले अध्याय से ही होती है, जहां हम देखते हैं कि प्रियव्रत महाराज है उनके रथ चक्र से 7 द्वीप बनते हैं और 7 समुद्र। और प्रियव्रत महाराज के वंश का वर्णन आता है पहले अध्याय में। श्रील प्रभुपाद प्रियव्रत महाराज के कार्य की तुलना भगवान के कार्यों से करते हैं, इतना महान उनका कार्य है। तो फिर आगे हम दूसरे अध्याय में देखते हैं कि अग्निंद्र महाराज है, उनके 9 पुत्र और उनके नाम से 9 द्वीपों का वर्णन किया जाता है। फिर नाभि महाराज, उनके पुत्र ऋषभदेव महाराज का चरित्र, उनका उपदेश, उनका कार्य। फिर भरत महाराज का चरित्र, जड़ भरत महाराज और रघुगण संवाद। और 14वें अध्याय में हम भौतिक सुख का अरण्य, इस तरह से अभी तक हमने इस कक्षा में चर्चा की है। तो आज के इस कक्षा में प्रियव्रत महाराज के वंश का महिमा है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि किस तरह भरत महाराज के जो पुत्र हैं सुमति, उन्होंने अपने दादाजी का मतलब ऋषभदेव जी का अनुसरण किया, उनके मार्ग का अनुसरण किया। तो ऋषभदेव महाराज का उपदेश, उनका चरित्र हम सुनते हैं कि आखिर में किस तरह से उन्होंने अवधूत अवस्था को प्राप्त किया। जैसे भक्ति के अनेकानेक मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, योगी है, और उनका अलग अलग मिश्रण भी है। तो उसमें से एक है अवधूत अवस्था जो ऋषभदेव ने आखिर में प्रस्तुत की जब दक्षिण में वो विचरण कर रहे थे और उनका अंतर्धान हुआ, उससे पहले उन्होंने ये अवधूत अवस्था। तो उसमें शरीर अवस्था से वो परे हैं, जहां हम देखते हैं कि वस्त्र नहीं पहनते, बाल लंबे हैं, नाखून बड़े हैं, स्नान नहीं करना है। तो उस अवस्था में कोई उनको पत्थर मारे, कोई उनके ऊपर विष्ठा त्याग करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अनासक्ति का एक परमोच्च बिंदु है। तो कोई भी सामान्य जीव इसका अनुकरण नहीं कर सकता। लेकिन इस श्लोक में इसके भाषांतर और तात्पर्य में हमने पढ़ा कि किस तरह से सुमति ने जिस मार्ग का अनुसरण किया, आगे जान के उसका संदर्भ लेते हुए फिर गलत धारणाएं और अधर्म का प्रस्थ बढ़ा, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा प्रयास करेंगे, जिसमें विशेष करके जैन तत्व ज्ञान का उल्लेख श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में करते हैं, बौद्ध तत्व ज्ञान का उल्लेख प्रभुपाद करते हैं। हालांकि इन दोनों तत्व ज्ञान के बारे में मैं खुद बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जो भी वरिष्ठों से सुना है उसको या पुनरुच्चार करूँगा। तो हम देखते हैं कि अवधूत अवस्था जो है, जो अनासक्ति का एक अत्युच्च प्रकटीकरण है, और इसका उद्देश्य क्या है, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि भगवान को प्राप्त करना। तो यही ऋषभदेव ने प्रदर्शित किया, जैसे हम शुकदेव गोस्वामी देखते थे, वो भी विवस्त्र थे, हम जड़ भरत का चरित्र सुने हैं, उनकी भी वही अवस्था थी। लेकिन श्रील प्रभुपाद उन पाखंडियों के ऊपर टीका करते हैं जो ये जो अवस्था है, जैसे सुमति ने तो अनुसरण किया लेकिन उनका आदर्श लेते हुए फिर गलत धारणाएं जो है उनका फैलाव हुआ। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि किस तरह से आर्य समाज करके प्रस्त बाद में वो सुमति को भगवान बुद्ध का अवतार मानते हैं, और जो जैन तत्व ज्ञान है उसका फैलाव होता है। तो हालांकि जो तत्व ज्ञान है उसके अनुसार एक तपस्या का मार्ग है, जिन्होंने सुमति को भगवान बुद्ध का अवतार मानते हुए उस तपस्या का अवलंबन किया, तो किस तरह की तपस्या वो करते हैं तो बहुत कठोर है, जिसमें हम देखते हैं कि वो एक दिन आड़ जाके उपवास करते हैं, तो मतलब आधा साल उपवास ही करना है, और कितना खाते हैं, जितना अपने मुंह में बैठेगा या जितना अपने हाथ में ले पाएंगे उतना ही खाना, चलते समय जूते नहीं पहनना, तो ये तपस्या है। फिर वो मानते हैं कि अहिंसा हमारा परम धर्म है, तो इसकी वजह से वो मुंह पे मास्क लगाते हैं कि कोई श्वास लेते हुए भी अंदर कोई छोटा जीव जंतु नहीं जाना चाहिए, उसका हत्या नहीं होना चाहिए, नहाते नहीं कई कई दिन, तो वो भी वो उसको एक तपस्या मानते हैं। और तपस्या का एक स्वरूप है अपने परिवार का मुंह भी नहीं देखते, स्पेशली अपने माँ बाप का मुंह भी नहीं देखना, तो इस तरह की तपस्या का अवलंबन वो लोग करते हैं। लेकिन रूपा जी कहते हैं कि वो खुद को आर्य मानते हैं, वेदों के अनुयायी मानते हैं, लेकिन वेदों में जो बताया उस मार्ग से भटके हुए हैं, तो उद्देश्य से वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसीलिए प्रभुपाद जी इस पर टीका करते हैं। और अलग एक तत्वज्ञान है जिसे बौद्ध तत्वज्ञान कहा गया है, तो वो क्या मानते हैं, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। तो भगवान बुद्ध का संदर्भ देते हुए उन्होंने जो आर्य सत्य बताए हैं, पंचशील तत्व बताए, अष्टांग मार्ग जो बताया है, उसको मानते हुए वो अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध के बारे में हम देखते हैं, जयदेव गोस्वामी ने जो दशावतार स्तोत्र लिखा है जिसमें कहते हैं, निंदसि यज्ञ विदेह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम। जो बौद्ध तत्व ज्ञान के भगवान बुद्ध ने अपना कार्य क्यों किया, कि जो वेदों में दिया हुआ जो यज्ञ विधि है, जो गोमेध यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, कुछ पाखंडी जो लोग हैं, जो ब्राह्मण है, या वेदों का गलत उपयोग करके खाली मांस खाने के लिए यज्ञ में आहुति देना, तो इस मार्ग का खंडन करते हुए यज्ञ विदेह श्रुति जातम, श्रुति जातम मतलब जो शास्त्र है, और उनको यज्ञ के नाम पे उसका कुछ गलत धारणा निकाल के मांस खाने के लिए यज्ञ में बलि देना, तो इस कार्य को खंडन करते हुए, कल मैं निताई जते पर उनसे चर्चा कर रहा था कि भक्ति विनोद ठाकुर जैन धर्म में बताते हैं, जैव धर्म जो किताब है उसमें भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वेदों का गौतम बुद्ध ने कौन से मार्ग का विरोध किया, वेदों का, कि जिसमें जो यज्ञ है उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया, सभी वेदों का खंडन उन्होंने नहीं किया है, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं जैव धर्म किताब में उसका उल्लेख है। क्योंकि हम देखते हैं वेदों का उद्देश्य, वास्तविक वेदों का उद्देश्य क्या है, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेदों, वेदों से जानने वाले भगवान एक है, शास्त्र में कहा गया है कि मायामुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। तो भगवान ने ये जो वेद और पुराण है वो जीव के कल्याण के लिए निर्माण किया है। तो हम पूरी तरह से वेद, जो भी शिक्षाएं है, जो भी अभी धर्म देखते हैं उसमें जो भी तत्वज्ञान है, वो हालांकि वेदों से ही आए हैं। तो वेदों का मूल उद्देश्य क्या है, इसीलिए फिर शंकराचार्य गौतम बुद्ध का जो तत्वज्ञान है उसको खंडन करते हुए वेदों की पुनर्स्थापना करते हैं। और उसके बाद आगे जाके मध्वाचार्य है, जैसे शंकराचार्य ने एकेश्वरवाद, फिर मध्वाचार्य द्वैतवाद, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदाभेद तत्व का स्थापना करते हैं। तो इस तरह से जो बौद्ध मत है अहिंसा परम धर्म, लेकिन वो भगवान को नहीं मानते। तो जो वेदों का सार है, वेदों का उद्देश्य है, फिर उससे भी वो परे हो जाते हैं। तो इसीलिए हम भागवत में इसका वर्णन सुनते हैं। तो भागवत हमें क्या सिखाता है, धर्म प्रोषजित कैतव उत्तरो परमो निर्मत्सराणां सतम, मतलब भागवत का एक उद्दिष्ट है जो कैतव धर्म है उसका निषेध करना, और जो वास्तविक धर्म है, वास्तविक धर्म क्या है, धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने कहा है उसे धर्म कहते हैं। तो शुद्ध धर्म की स्थापना और कैतव धर्म का निषेध करना एक भागवत का उद्देश्य है। तो इसीलिए सुमति के कारण जो एक नया पंथ है उसकी टीका यह हुई है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस तरह के जो अधर्म है उसके ऊपर कठोर टीका करते हैं, क्योंकि कलियुग में तो ऐसे पंथ हर जगह हमें दिखते हैं। इसीलिए भागवत में श्रीमद् भागवतम स्कंद सातवा अध्याय 15वां श्लोक क्रमांक 13 जो नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज का संवाद है उसमें सुंदर वर्णन आता है। धर्म बाधो विधर्म स्यात् परधर्मोऽन्यचोदितः उपधर्मस्तु पाखंडो दंभो वा शब्दभिश्छल। तो इस श्लोक में अधर्म के प्रकार बताए हुए हैं जिसमें विधर्म है, परधर्म है, उपधर्म है, छल धर्म है, धर्म आभास है। तो बहुत पहले ही नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में भी इस तरह के अधर्म आएंगे, क्योंकि त्रिकालदर्शी नारद मुनि ये जानते थे कि कलियुग में इसका फैलाव होगा। तो वही कठोर टीका और कौन किस तरीके के जो अधर्म है उसका फैलाव हुआ इस श्लोक में, 13वें श्लोक में और 14वें श्लोक में श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं। तो विधर्म, ये जो अधर्म के प्रकार है उसमें पहला है विधर्म। तो विधर्म मतलब कोई भी धर्म है उसका पालन किया तो भी चल सकता है, उसकी एक सीमित व्याख्या है कि कोई भी धर्म का हम पालन कर सकते हैं। जो भगवान ने बताया है जो जीव का वास्तविक धर्म है उसके विरुद्ध लेकिन इसका वर्णन आता है। जैसे हमने शुरू में कहा कि जैन लोग है जो अनावश्यक त्याग है, अनावश्यक मतलब अहिंसा का जो अवडंबर मचाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत बड़े टेम्पल जब खड़े होते तो वहां हिंसा होती है। जैसे जैन फॉलोअर कभी कभी खुद को त्यागी बताते हैं या दानी बताते हैं, लेकिन मानो अगर जूते दान करना चाहते, जूते तो बहुत दान करेंगे बहुत लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग जूते नहीं पहनते, ऐसे ही विदाउट शूज वो घूमते रहते, लेकिन वो जूते अगर गाय के चमड़े से बने हुए तो वो जो गो हत्या है उसका निषेध नहीं करते। खुद को दानी बताते लेकिन वो जो अहिंसा परमो धर्मो तत्व है वो पालन नहीं करते। मतलब वेदों में जो बताए वो सही तरीके से पालन नहीं करते। मतलब ये जो विधर्म प्रकार के लोग होते हैं वो वैदिक जो शुद्ध तत्व है उसमें अपना कुछ भी बता देते। जैसे कुछ साल पहले मैंने सुना था कि कोई लोग ऐसे भी थे जैसे वो बताते कि रावण इज मोर वर्चुअस देन राम। क्यों? क्योंकि इतना चरित्रशाली था कि उन्होंने सीता माता को अपहरण किया लेकिन एक साल अपने पास रखे हुए भी उसको हाथ भी नहीं लगा। तो इस तरह की धारणाएं का प्रचार लोग करते हैं कि रावण भी उनके लिए श्रेष्ठ है तो उसको पूजा करने वाले भी है, मांस भक्षण उसको धार्मिकता मानते हैं। क्यों नहीं, वो मांस में एक भी रक्त की बूंद भी नहीं रहती, उस तरह का मांस हम भक्षण करते हैं तो उसको भी वो धार्मिकता मानते हैं। मतलब क्या, जो वास्तविक धर्म है जैसे यमराज अपने दूतों के बताते कि धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम, तो उसके विपरीत कार्य करेंगे। तो इस प्रकार को भागवत में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को करते कि इस प्रकार को विधर्म कहते हैं। उसके बाद आता है परधर्म, मतलब ऐसा धार्मिक तत्व जो कोई एम्पावर्ड पर्सन है उसके आचरण से प्रतीत होता है, दिखता है। वो बताता नहीं कि इस तरह का अनुसरण करो या मैंने जो कहा है उसी तरह को उसको फॉलो करो, लेकिन उसका अंधानुकरण करते हैं उनके अनुयायी। तो इसे परधर्म प्रकार कहा गया है। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु अक्रूर घाट में जब निवास करते थे तो उस समय उस वृंदावन में एक अफवाह फैली हुई थी कि यमुना में कालिया कृष्ण दर्शन देते हैं, कालिया नाग के ऊपर रोज दर्शन देते हैं। चैतन्य महाप्रभु थे उस समय और इतना उसका फैला हुआ कि चैतन्य महाप्रभु का निजी सेवक आके चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं कि क्या हम दर्शन करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ा हल्के से उनको, पर बाद में चैतन्य महाप्रभु को पता चला एक सन्यासी से कि असल में क्या हुआ था, एक मच्छीमार है जो अपनी नौका लेके वहाँ रात को विहरण करते, उसके ऊपर जो दिए हैं तो लोग फिर उस धारणा को मानने लगे कि वो जो नौका है वो कालिया है, जो दिए है वो कालिया की आँख है और जो नौका चलाने वाला है वो भगवान है। तो इस तरह से अंधानुकरण, मतलब कुछ अच्छे से ज्ञात नहीं होता। जैसे रूप रघुनाथ प्रभु जी एक बार बता रहे थे कि वो कुंभ मेला में पुस्तक वितरण कर रहे थे और कुंभ मेला में थे तो एक वृक्ष के नीचे थे तो उनके ऐसे उनका उपवस्त्र था तो नीचे गिर गया। फिर अभी बार बार नीचे गिर रहे तो उन्होंने उसको अच्छे से फोल्ड किया और पेड़ के नीचे रखा। अभी कुंभ मेला में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, फिर वो सैफ्रॉन वस्त्र है तो लोग बाद में वो पुस्तक वितरण में व्यस्त हो गए, लेकिन जब उनका दृष्टि उनके वस्त्र पे गया तो लोगों ने उसके ऊपर अबीर गुलाल अक्षदा डाल के उसका प्रणाम करने का शुरुआत किया था। तो इस तरह से कोई भी, जैसे गांव-गांव में देखते हैं कहीं भी पत्थर होता है उस पे अबीर गुलाल चढ़ाए तो प्रणाम करते हैं। तो बहुत बार जैसे शिक्षाष्टकम प्रभु बता रहे थे एक बार नासिक में वो थे और महाराज से कुछ बातें चल रही थी, वो भी फेस्टिवल का दिन था या कुछ था, तो महाराज से बात कर रहे थे बहुत सारे लोग, तो उनका एक पर्सनल डिस्कशन था। फिर किसी को लगा कि कुछ तो चल रहा है, फिर लाइन तो ये लाइन इतना लंबा होते गया। फिर शिक्षाष्टकम प्रभु बोल रहे थे कि कुछ समझ में आता, इतना हम बोल रहे हैं लेकिन वो इतना लंबा लाइन क्यों है। तो लोगों को लग रहा था कि अभी महाराज जी सबको आशीर्वाद देने वाले या कुछ तो पर्सनल इंस्ट्रक्शन देने वाले, इस तरह की धारणा होते हुए फिर लंबा लाइन लगा। तो अजानते हुए अंधानुकरण जिसे कहते हैं, जैसे कल नीताई चैतन्य प्रभु मुझे बता रहे थे कि प्रभुपाद जी फ्लाइट में जा रहे थे और कुछ कारणवश उन्होंने थोड़ा सा सेवन अप का प्राशन किया तो पूरे इस्कॉन में फिर प्रचलित हुआ कि सेवन अप अलाउड है। तो उस परिस्थिति में उन्होंने प्राशन किया था, लेकिन फिर उसका प्रचार किस तरह से हुआ, तो जैसे अभी कल परसों गणेश उत्सव आएगा, हमने कुछ साल पहले देखा है कि गणेश जी को दूध प्राशन करने का विधि हुआ था तो लोग उसके पीछे कितने पागल थे। तो दिल्ली की घटना है कि कुछ साल पहले, दशक पहले, इस्कॉन में भी लड्डू गोपाल को दूध पिलाना, प्रभुपाद जी को दूध पिलाने का प्रयास भी किया गया था, तो ये इस्कॉन में भी हुआ है। तो इस तरह से ये सब प्रकार जो है जो वास्तविक शास्त्रानुसार नहीं है, तो इसमें नारद मुनि कहते हैं कि ये परधर्म है जिसका अंधानुकरण हुआ है। बाद में तीसरा प्रकार है उपधर्मी, जो वेदों में दिया हुआ जो भी कुछ है, मतलब निरर्थक वेदों के विरोधक, उनको परधर्मी कहते हैं। वो वेदों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं लेकिन भक्ति का दिखावा करते हैं, खुद को भगवान का अवतार मानते हैं। जब जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु निवास कर रहे थे तो उस समय अति बोड़ी जगन्नाथ, किसी ने सुना है, तो कोई एक संप्रदाय के व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु से मिले और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बताया कि आप भगवान के अवतार हैं, मैं भी हूं। लेकिन क्या है जानते हैं, जब गोलोक वृंदावन में राधा और कृष्ण एक दूसरे से हास्य विनोद करते थे तो कृष्ण का हास्य मतलब आपका प्रकटीकरण है और राधा रानी का हास्य मतलब मैं हूं। तो चैतन्य महाप्रभु प्रछन्ना अवतार है, उन्होंने कभी खुद से कहा नहीं ना कि मैं भगवान हूं, तो फिर उनको प्रणाम करते हैं और मैं तो नहीं हूं लेकिन आप जरूर रहेंगे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने मुझे अनुमोदन दिया, रिकमेंड किया है कि मैं अवतार हूं। इस तरह से वो अति बोड़ी जगन्नाथ करके वो संप्रदाय का प्रचार कुछ काल तक हुआ। तो इस तरह से उपधर्मी लोग, जैसे गलत तरीका, जैसे सैन फ्रांसिस्को में एक वर्णन आता है, जब प्रभुपाद थे तो कोई एक भक्त था तो भाव भक्ति के लक्षण प्रकट करते हुए जो अष्ट सात्विक विकार है उसका प्रकटीकरण उसने किया। तो डिवोटीज कंफ्यूज हो गए कि इसको सच मानना है या ये गलत है, क्या करें। फिर प्रभुपाद जी को जाके वो पूछते हैं, प्रभुपाद जी ऐसे व्यक्ति है, अभी वो अष्ट सात्विक उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं, अभी तो मूर्छित है, क्या करने का। तो प्रभुपाद पाखंडियों के खिलाफ थे, तो उनका स्पेशल फार्मूला था, तो उन्होंने बोला जाओ और उसको इतने जोर से लात मारो और फिर देखो, अगर वो सचमुच उस भाव में है तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से प्रभुपाद ने उनको उस समय बताया था। तो इस तरह के जो लोग हैं, इसको शास्त्र क्या बताता है, उपधर्म प्रकार के जो लोग हैं इसका वर्णन आता है। बाद में है छल धर्म चौथा। तो छल धर्म मतलब शास्त्रों का वचन है उसको उसका छल करते हुए कुछ तो गलत प्रस्तुत करना। जैसे आज तक हम देखते हैं कि गीता पे कितनी सारी अनगिनत टीकाएं हैं जो प्रस्तुत हुई है, लेकिन वास्तविक जो भगवान को प्राप्त करना जो उद्देश्य है वो उसमें नहीं दिखता। जैसे और जैसे मलेशिया में कुछ मिशनरी लोग हैं जो हरे कृष्णा भक्तों के बारे में अपप्रचार कर रहे थे, तो उनका वर्णन क्या था कि ये असुरों की पूजा करते हैं। किसकी? असुरों की। और इसके लिए शास्त्र वचन था उनके पास। भगवत गीता में 10वें अध्याय में कृष्ण क्या कहते हैं, असुरों में मैं प्रह्लाद हूं, और ये रोज नरसिम्हा आरती गाते हैं। असुरों में प्रह्लाद कौन है, कृष्ण है, तो भी असुर ही हुए, तो ये असुर की पूजा करते हैं, हालांकि उसका पूरा। तो इस तरह से शास्त्र वचन प्रस्तुत करते हैं। तो जैसे भगवान के वचन प्रस्तुत करते हैं, जैसे गुरु है आचार्य है उनको भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि शंकराचार्य जी ने वेदों की स्थापना की जो बौद्ध मत का खंडन किया, लेकिन उन्होंने जो अंतिम शिक्षा दी, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूढ़ मते यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाही पाही मुरारे, लेकिन फिर उनके अनुयायी भज गोविंद मूढ़ मते, उन्होंने फिर गलत धारणा क्या निकाली कि जो गोविंद को भजन करते हैं वो मूढ़ है। तो आचार्य ने जो बताया उसको भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया, और क्या किया कि जो शंकराचार्य के गुरु है गोविंदपाल उनका भजन करना चाहिए ये कहते हैं। तो इस तरह के जिन्होंने वेदों की स्थापना की फिर उनका ही शब्द लेके फिर गलत प्रस्तुतिकरण, तो ये छल है। जैसे प्रभुपाद जी ने अलग अलग स्थिति में अलग अलग भक्तों को अलग कुछ तो उस कारणवश कहा। जैसे कोई एक भक्त था जिसमें कुछ कारणवश मशरूम का सेवन किया था, हालांकि मशरूम तो मान्य नहीं, वर्जित है, भक्त लोग उसका सेवन नहीं करते, लेकिन गलती से उसने किया। तो फिर उन्होंने प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद गलती से मुझसे कुछ अच्छा ये हुआ है, तो प्रभुपाद जी फिर उसको लिखते कि ठीक है बहुत बड़ा पाप नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं, लेकिन मशरूम इज ओके। तो फिर मशरूम इज ओके इस वाक्य को लेके हुए फिर बहुत बड़ी इंडस्ट्री मशरूम का व्यापार शुरू हुआ। तो भी ये भी एक तरह का छल ही है। जैसे किसी कारणवश जब कोई डिओटीज कलकत्ता में प्रचार कर रहे थे प्रभुपाद के समय, तो उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज हो रही थी, तो एक भक्त प्रभुपाद को लिखते हैं प्रभुपाद बहुत तकलीफ हो रही है तो ये प्रोजेक्ट हमें बंद करना चाहिए। तो प्रभुपाद कभी कभी गुस्से में कहते हैं, उनको वो खाली उनके लिए था कि आप नहीं कुछ करना चाहती है तो ठीक है, मायापुर में आ जाओ, हम आपका पूरा जो शारीरिक मानसिक आर्थिक ख्याल रखेंगे, आ जाओ इधर रहो मत कुछ करो। जैसे बच्चे अगर सुनते नहीं तो माँ बाप भी उनको बोलते हैं ना, ठीक है कुछ मत कर, तू घर में बैठा रहे, मैं तुझे जिंदगी भर पालूंगा। तो कहने का तात्पर्य तो ऐसा नहीं होता ना। फिर वही स्टेटमेंट लेके किसी ने छाप दिया कि प्रभुपाद ने कहा है जो भी मायापुर में आना चाहता है वो आ सकता है, उसका पूरा जो रहने खाने का आर्थिक शारीरिक उसका ख्याल रखा जाएगा। तो इस तरह के आचार्यों का जो शब्द है उसको भी उसका भी छल होता है। तो इसका खंडन शास्त्र में क्या है, नारद मुनि कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को ये छल धर्म है। और धर्म आभास जो वास्तविक लगता है लेकिन होता नहीं, इसे धर्म आभास कहते हैं। जैसे मृगजल है जो लगता है मृगजल है लेकिन होता नहीं, उसी तरह हम बहुत सारे तीर्थ स्थलों में जाते हैं, लगता है कि अरे ये भी शायद इस्कॉन का ही मंदिर रहेगा लेकिन होता नहीं, उनकी फिर अलग धारणाएं होती है। जैसे हम कल ऋत्विकता के बारे में थोड़ा सा चैतन्य प्रभु नीताई चैतन्य प्रभु बता रहे थे मुझे कि जो ऋत्विक फिलोसॉफी है तो भी लगती है लेकिन प्रभुपाद के सिद्धांतों के अलग जाते हुए वो लोग कार्य कर रहे हैं। तो शास्त्र में क्या कहा है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाते वही कल्पते। तो जो साधु शास्त्र और गुरु इनके मार्गदर्शन के बिना अगर कोई एकांत में अपना ही मार्ग चयन करता है तो समाज में केवल उत्पात मचाता है। तो ये पांच धर्म जो अधर्म जो नारद मुनि बताते हैं तो उसी का वर्णन इस श्लोक में जो सुमति ने जो मार्ग का अनुसरण किया, फिर उसके बाद जो जैन तत्व ज्ञान है बौद्ध मत है तो उसका अंधानुकरण करते हुए उनके अनुयायी जो है वो कर रहे हैं। तो इस पांच अधर्म से परे होते हुए जैसे मैंने कहा कि भागवत शुद्ध धर्म की स्थापना करती है और ये जो शुद्ध धर्म है या तपस्या के अनेकानेक मार्ग है जो कठोर तपस्या है उसका खंडन किया गया है। तपस्या का उद्देश्य क्या है, अनेकानेक लोग अनेक तरह की तपस्या करते हैं लेकिन हमें यह मानना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है। ये तपस्या दी क्यों गई है कि जीव भोग प्रवृत्ति के कारण इस भव संसार में अटका हुआ है तो बंधन में है, उसकी वास्तविक स्वरूप स्थिति क्या है, जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्ण दास, तो उसको भगवान का भक्त बनना है भगवान का दास बनना है और इस मरते जगत से फिर वापस जाना है। तो आज हमने जो इस भौतिक संसार में हमारी जो एक मरीज अवस्था है उसके लिए जो उपाय दिए गए हैं उस मरीज अवस्था से बाहर निकलने के लिए जो उपाय है वो तपस्या। तपस्या ही हमारा वास्तविक उद्देश्य नहीं है, तपस्या एक माध्यम है तो उससे हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन अलग अलग जो धारणाएं हैं जो गलत धारणाएं उससे हम भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहिए कर सकते हैं। तपस्या सही होनी चाहिए। तो ये सही तपस्या और गलत तपस्या इसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में जो अध्याय 17वां अध्याय श्लोक क्रमांक 14 से लेके 19 तक उसमें बताए गए हैं। मतलब जो गलत धारणाएं हैं जो राजसिक स्तर की तपस्या है जिसमें व्यक्ति मान सम्मान सत्कार इसकी अपेक्षा के हेतु तपस्या करता है और तामसिक तपस्या है जिसमें वो आत्म पीड़ा करवाता है, खुद को कठोर तपस्या करता है, खुद को भी उसको तकलीफ होता है और उसका उद्देश्य भी क्या होता है तामसिक तपस्या का, दूसरों को पीड़ा देना। जैसे हिरण्यकश्यप का हम देखते हैं कि उन्होंने घोर तपस्या की लेकिन उसका उद्देश्य क्या था, सभी देवताओं को तकलीफ देना है, विष्णु को मारना था, तो उद्देश्य गलत। लेकिन उसी अध्याय में भगवान योग्य तपस्या क्या है उसमें स्तर है। सबसे पहले वो शारीरिक तप के बारे में चर्चा करते हैं जिसमें ज्येष्ठ व्यक्ति है उनकी पूजा करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, शुचि हमें हमेशा शुचि स्वच्छता का अवलोकन करना चाहिए, अहिंसा शारीरिक स्तर पे वहां अहिंसा का वर्णन आता है। अहिंसा परमो धर्मो नहीं है, अहिंसा तो इस्कॉन में हम पहले ही मांस भक्षण नहीं करना, चार नियमों का पालन स्पेशली मांस भक्षण नहीं करना, तो अहिंसा ये तो हमारा शुरुआत का धर्म है तो शास्त्रीय वचन है जो एक शारीरिक तप है, और ब्रह्मचर्य तो मानसिक शारीरिक भावनिक सभी रूप से ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य, उसके बारे में वर्णन आता है, भगवान करते हैं। फिर है मानसिक तप जिसमें आत्मसंयम, समाधान, सिंप्लिसिटी और इंद्रिय तृप्ति से विभक्त होना, जो हमने देखा है कि जो अवधूत है वो इंद्रिय तृप्ति से परे हैं, हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ मानसिक तप जिसमें इंद्रिय संयम बहुत महत्वपूर्ण है, और सात्विक तप मतलब क्या, जो भगवान के संतुष्टि के लिए होता है। तो सभी तप का अनुसरण करते हुए हमें सात्विक तप करना है जो भगवान के संतुष्टि के लिए हो, और इसी को जैसे वही वास्तविक धर्म पद्धति है, सवे पूसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षचे अहैतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसदति, मतलब भगवत भक्त होने के लिए जो सहायभूत हो वही धर्म पद्धति वास्तविक है। तो इसीलिए शास्त्र गंभीरता से हमें सूचित करता है कि सभी प्रकार के जो अधर्म हैं उनको त्याग करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, जो वास्तविक धर्म है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। तो वास्तविक धर्म, वास्तविक तप, वास्तविक ध्यान, वास्तविक पूजा क्या है, तो श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद में बताया जाता है, एक सुंदर श्लोक है, आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, नारायण परो योगो नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। तो योगों का सार भी भगवान है, सभी तप का सार भी है भगवान नारायण, ज्ञान क्या ये सार है कि नारायण परागति, तो भगवान को प्राप्त करना का उद्देश्य है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि इस सभी अधर्मों का त्याग करते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने जो अखंड परंपरा हमें दी है और उसके माध्यम से चलते हुए हमें आचार्यों को वचनों को सही ढंग से लेते हुए, क्योंकि साधु शास्त्र और गुरु, क्योंकि कभी कभी जैसे कल मैं और नीता जतनेपुर डिस्कस कर रहे थे कि कैसे गौरांग प्रभु एक बार बता रहे थे कि शास्त्र में कुछ विधि बताया है लेकिन जो परंपरा से अधिकृत आचार्य आते हैं वो तत्कालीन परिस्थिति देखते हुए हमें कुछ सुझाव देते हैं, तो हमें वो लेना चाहिए और उसको प्रस्तुत भी सही ढंग से करना चाहिए। जैसे गौरांग प्रभु बताते हैं कि ट्रैफिक है, या कभी कभी हम प्रवास करते हैं तो बीच में रेड सिग्नल आता है, उसके लिए स्पेशली पुलिस भी होते हैं, लेकिन आपातकालीन स्थिति में रेड सिग्नल होते हुए भी पुलिस क्या बोलता है, आप चलो निकलो यहां से, क्यों? तो पुलिस को पता है पीछे से कोई मंत्री आ रहा है या कोई कुछ भी है, जो स्थिति वो पुलिस को पता है, इसीलिए वो कह रहा है। अभी वहां अगर हम सोचेंगे कि ऐसा क्यों, नहीं सिग्नल है मैं नहीं जाऊंगा, पुलिस की भी नहीं सुनूंगा, तो नहीं चलेगा। तो कभी कभी हमारे आचार्य है वो हमारी अवस्था देखते हुए, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज 64 राउंड्स उनका सुझाव था, लेकिन हमारी स्थिति देखते हुए प्रभुपाद जी ने हमें 16 माला प्रस्तुत किया है। फिर उसमें आगे जाके हमारे गुरु महाराज जो है आज की स्थिति देखते हुए हमें बताते हैं, लेकिन ये सभी प्रकार के जो मार्ग है हमें उनको अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। यही वास्तविक शिक्षा इस श्लोक से हम प्राप्त कर सकते हैं, और धर्म के अधर्म के अलग प्रकार है, धर्म के अलग प्रकार है, और अलग अलग युग में अलग अलग प्रकार के धर्म हैं। तो वास्तविक हमें क्या करना चाहिए, जैसे भागवत बताते हैं, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापारे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। अलग अलग मार्ग है लेकिन कलयुग में सबसे आसान क्या है, कलौ तद हरि कीर्तनात्। तो हरि कीर्तन करना चाहिए, और इस श्लोक से हम ये शिक्षा प्राप्त करेंगे कि प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं। तुकाराम महाराज अपने एक अभंग में कहते हैं कि धर्माचे पालन करणे पाखंड खंडन हेची अम्हा करणे काम बीज वाढ़वावे नाम। तो जो भगवत भक्त है, प्रभुपाद जी का एक उद्देश्य है कि धर्माचे पालन, जो वास्तविक धर्म है उसका पालन करना है, पाखंड खंडन, जो वास्तविक में पाखंड है, गलत मार्ग है, अधर्म है, उसका खंडन। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? बीज वाढ़वावे नाम। जो लोग हैं उनके उम्र भगवान के ऊपर, भगवान के नाम पर, नाम में उनकी श्रद्धा विकसित हो। तो इस तरह से आज के इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में हमने देखा कि प्रियव्रत महाराज के वंश में सुमति, भरत महाराज के पुत्र, जो ऋषभदेव का अनुकरण करते हैं, फिर उसका अंधानुकरण होता है, गलत तत्वज्ञान का फैलाव होता है, श्रीमद् भागवत, फिर नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में हमने पांच प्रकार के जो धर्म देखे, जिनमें हैं विधर्म, परधर्म, उपधर्म, छल धर्म और धर्माभास। और श्रील प्रभुपाद इसके ऊपर टीका करते हैं, और वास्तविक तपस्या क्या है, गलत तपस्या क्या है, और जो सात्विक तपस्या है जो खाली भगवान के प्रत्यर्थ करनी चाहिए, इसका पुरस्कार गीता और भागवत दोनों करते हैं। तो हमें गुरु साधु शास्त्र इस त्रिकोण से योग्य समय, योग्य तरीका का, जो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हमें जो सौभाग्य मिला है, क्योंकि बहुत सारे दुर्भाग्य जीव है कि उनको ये गलत धर्म में ही वो भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी की कृपा से हमें वास्तविक धर्म का सुयोग्य मार्ग मिला है। तो हमें उससे अच्छी तरह से लेना है और अच्छी तरह से प्रस्तुत भी करना है, क्योंकि कल दो तीन दिन पहले मुझे ईश्वर गोपाल रूप बता रहे थे कि कोई भक्त ऐसे भी है आज के तारीख में जिन्होंने दीक्षा लिया, ब्राह्मण दीक्षा लिया, जनेऊ है वो निकाला, और वो गलत तरीके के मार्ग का आज के तारीख में अनुसरण कर रहे हैं, जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, जिनके साथ हमने हम रुके हैं, तो बता रहे थे। तो ये कलयुग में एक स्वाभाविक है, शास्त्र बताता है ये स्वाभाविक है, लेकिन हमें खुद के लिए सजग रहना है और आचार्यों का जो सिद्धांत है उसको सही तरीके से धारण करना है। तो मैं एक क्षमा याचना करूँगा, मांगूंगा, स्पेशली यहाँ वरिष्ठ भक्त आदि केशव प्रभु प्रेमलीला माता जी बैठे हैं, मैं थोड़ा मुझे किस तरह से मैं यहाँ बोलूँ इनके सामने डर लग रहा था क्योंकि मेरा जितना आयु नहीं उतना समय उन्होंने भक्ति में बिताया है, महाराज जी का संदेश और डेली हम उनसे सुनते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अभी आप सबके आशीर्वाद की याचना करते हुए आज की कक्षा को यहाँ विराम दूंगा। श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा।